मेरे सुंदर प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 4 जनवरी 2019 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने संबोधन में कहा मेरे सुंदर प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगा होगा। अजीब सा इस मायने में कि प्यारे दोस्तों तक तो ठीक है, आप सब सुनते भी आ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये सुंदर शब्द कहां से आ गया? और जरूरी तो नहीं कि हर कोई सुंदर ही हो, तो फिर ये सुंदर प्यारे दोस्तों कहां क्यों जा रहा है? और खासकर उनके लिए जिनको कभी देखा नहीं गया, जिनको कभी जिनसे मुलाकात नहीं हुई, जिनसे कभी बात नहीं हुई, उन्हें सुंदर कह कैसे दिया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग में अगर इस तरह का कोई प्रश्न आ रहा हो तो उसका जवाब देता हूं और फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए, मेरे लिए सुंदर की परिभाषा बिल्कुल अलग है। सामान्यतः हमारे दिमाग में सुंदर की परिभाषा क्या है? जो दिखने में खूबसूरत हो। हम व्यक्ति के बारे में अगर बात करें तो जो दिखने में खूबसूरत हो, मैं इसे थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं। नो डाउट कि जो दिखने में खूबसूरत होगा उसे आप सुंदर कहेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिसे आप प्यार करते हैं वह सुंदर ही होता है, या यूं कह लीजिए वो सुंदर नहीं भी हो तो आप प्यार कर करके उसे सुंदर बना देते हैं, आपका प्यार उसे सुंदर बना देता है। और अगर कितना भी वह असुंदर हो, आप जब प्यार करने लगते हैं तो उसकी वह असुंदरता आपके लिए सुंदरता में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया, मेरे सुंदर प्यारे दोस्तों। प्यारे तो आप सब हैं ही, और चूंकि आप सब प्रिय हैं इसीलिए निसंदेह रूप से नो डाउट कि आप सब कम से कम मेरे लिए तो सुंदर भी हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब आप लोगों ने मेरे इस संबोधन को पूरे खुले मन से स्वीकार कर लिया होगा। फ्रेंड्स, आइए अब आगे की बातें करते हैं। और मैं आज की इस बात को कल की बात से ही जोड़कर आगे बढ़ाना चाहूंगा। दोस्तों, कल मैंने आपको अपनी लिखी हुई एक लघु कथा सुनाई थी और उस लघु कथा पर मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। और सच पूछे तो कभी कभी गर्व का भी एहसास होता है कि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं वो वाकई में इतने एक्टिव हैं कि मुझे इतने सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उन प्रतिक्रियाओं में उन्होंने अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें कही हैं, इस जो कहानी है उसके अर्थ बताए हैं, उसके भावार्थ बताने की कोशिश की है, अपनी अपनी तरफ से उन्हें समझा भी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितने लोगों ने लिखा है उन सब ने इसके अलग अलग डायमेंशंस के बारे में चर्चा की है। यानी कि कहानी एक है लेकिन समझा इसे कई तरीके से गया है। और मैं समझता हूं कि किसी भी कला कि इससे बड़ी सफलता का प्रमाण कोई भी दूसरा नहीं हो सकता कि उसे अलग अलग तरीके से समझा जा रहा है। यही कला की सबसे बड़ी ताकत भी होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ समय पहले सूक्ष्मता की बात की थी। सूक्ष्मता कि जब हम सूक्ष्मता में उतरते चले जाते हैं तो फिर हमें एक ही चीज की कितनी सारी परतें दिखाई देने लगती हैं, उसके कितने सारे कोण नजर आने लगते हैं, और यही तो हमारी ब्रिलियंसी होती है। याद कीजिए, मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से आपसे बात की थी। हम में जितनी ज्यादा यह ब्रिलियंसी आने लगती है, या कह लीजिए कि जितनी ज्यादा हमारे दिमाग में यह चमक पैदा होने लगती है, हम उतने ही विशिष्ट बनते चले जाते हैं। विशिष्ट इसलिए बनते हैं कि तब हम सही मायने में इस बात को समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मैं कुछ भी कह रहा हूं, मैं एक सिंपल सा ही वाक्य कह रहा हूं, मैं बहुत ही सरल सा वाक्य कह रहा हूं, और सरल से वाक्य का अर्थ हम सब जानते हैं। लेकिन जो ब्रिलियंट होगा, जो कला साहित्य संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, जो उनकी गहराइयों में उतर सकता होगा, जो उसके सूक्ष्मता को पकड़ सकता होगा, वो वास्तव में जो सुन रहा है, जो कहा जा रहा है, जिसे वह सुन रहा है, उनकी बारीकियों को समझता है और फिर पता लगा लेता है कि वास्तव में यह बात आ कहां से रही है। और जब यह पता लगता है कि यह बात आ यहां से रही है, तो आप सोच करके देखिए कि आप कहने वाले को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यह इसकी खासियत होती है। आइए इसी बात को मैं अब इस लघु कथा पर अप्लाई करके आप से कुछ बातें करता हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से श्रोताओं ने मेल लिखकर ये भी कहा है कि सर इसको थोड़ा सा आप और आगे बढ़ाइए, इसके बारे में हम लोगों को बताइए। बहुत से लोगों ने जो अपने अपने अर्थ निकाल करके दिए हैं उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम सही हैं या सही नहीं है, इसके बारे में आप अपने मत दीजिए। पहली बात तो मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप साहित्य के बारे में कोई भी अपना मंतव्य तैयार करते हैं, अपनी राय बनाते हैं, तो मानकर चलिए कि आप गलत नहीं हैं। गलत का मूल्यांकन कौन करेगा? क्या राइटर करेगा? राइटर ने अपने ढंग से अपनी चीजें लिख दी, पता नहीं उसके दिमाग में क्या था उसने लिख दिया, या उसके दिमाग में जो था भी, तो जरूरी नहीं है कि वही चीज अगर आप कहें तो वह सही होगा। सही का तो एक पैमाना होना चाहिए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगर आप किसी दूसरे का नाम लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये तो तथ्य है। लेकिन साहित्य तथ्य नहीं होता है, साहित्य तथ्य से परे होता है, कहा कुछ जाता है अर्थ बहुत से निकलते हैं। तो पहली बात तो यह कि आपने जो भी समझा, जो भी अर्थ निकाला, वह अपने जगह पर सही है, गलत होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि आपने वो अर्थ निकाला। मैं अपने अर्थ को कैसे सही मान लूं, क्योंकि मेरे पास पैमाना तो वही है। लेकिन यहां मैं जब जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह बेसिकली इनके डायमेंशंस के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो इससे निकलते हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं, और इसको मैं मेरे अपनों को मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन यह जरूर है मेरा मकसद कि मैं आप लोगों को वे बातें बताऊं ताकि आपकी जो दृष्टि है, साहित्य कला को देखने की जो दृष्टि है, उनको समझने की जो दृष्टि है, उसमें विस्तार हो सके, आप ये जान सके कि अच्छा ऐसे भी इसको देखा जाना चाहिए था। और इनफैक्ट जानते हैं कि आपको मछली पकड़ना सिखाना ही मेरा मकसद है, आपकी थालियों में मछली परोसना नहीं। तो मित्रों मैं अपनी बात कहूं इससे पहले आइए क्विकली जल्दी से हम लोग इस कथा को एक बार फिर से सुन लेते हैं, क्योंकि तभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ पाएंगी। इसका शीर्षक है मिलन, याद रखिए मिलन। और आप देखते हैं, आपने कल सुना कि उनका मिलन नहीं हो पाता है, इसके बाद वो कभी मिलते ही नहीं है, तो आपको दिमाग में तो यही स्ट्राइक कर शायद किया हो कि यार ये मिल तो नहीं पाते, मिल ही नहीं पाते, तो फिर ये कहानी का शीर्षक मिलन कैसे हो गया? देखिए मैं कहानी पढ़ता हूं। उस दिन तुम आए नहीं, मैं प्रतीक्षा करती रही तुम्हारी, प्रेमिका ने उलाहने के अंदाज में कहा। मैं आया तो था लेकिन तुम्हारा दरवाजा बंद था इसलिए वापस चला गया, प्रेमी ने सफाई दी। अरे भला यह भी कोई बात हुई, प्रेमिका बोली। क्यों, क्या तुम्हें अपना दरवाजा खुला नहीं रखना चाहिए था? प्रेमी थोड़ा गुस्से में बोला। यदि दरवाजा बंद ही था तो तुम दस्तक तो दे सकते थे, मैं तुम्हारी दस्तक सुनने के लिए दरवाजे से कान लगाए हुए थी, प्रेमिका ने रूठते हुए कहा। क्यों, क्या मेरे आगमन की सूचना के लिए मेरे कदमों की आहट पर्याप्त नहीं थी? प्रेमी थोड़ा ऊंची आवाज में बोला। इसके बाद वे कभी नहीं मिल सके, क्योंकि न तो प्रेमिका ने अपना दरवाजा खुला रखा और न ही प्रेमी ने उस बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कभी नहीं मिले, स्पष्ट रूप से कहा गया है, और शीर्षक रखा गया है मिलन। उटपटा अटपटा सा आपको नहीं लग रहा है? उटपटांग सी बात नहीं लग रही है? विरोधाभास नहीं लग रहा है? यस, ये विरोधाभास मित्रों नहीं है। जो नहीं मिल पाते वही प्रेम होता है। प्रेम जैसे ही मिलता है वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ये प्रेम का इतिहास रहा है, ये प्रेम का इतिहास रहा है। चूंकि वो कभी मिल नहीं पाए इसके बाद, इसीलिए लगातार दोनों एक दूसरे की स्मृतियों में बने रहे और अच्छी भावनाओं के साथ बने रहे, उन भावनाओं के साथ बने रहे जो भावनाएं उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोपित की थी, यानी कि उनकी आरोपण वाली जो भावनाएं थी वो टूटी नहीं। नहीं मिलना ही प्रेम का मिलना होता है, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि इन दोनों में कितना जबरदस्त ईगो है। आखिरी में क्या है कि न तो उसने दरवाजा खुला रखा और न उसने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। दोनों ने अपने को ओपन ही नहीं किया, दोनों अपने अपने ईगो में जी रहे हैं, दोनों ईगो में जी रहे हैं। प्रेम में ईगो के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, वहां तो दरवाजा खुला ही रहता है, दरवाजा खुला ही रहता है, कोई ईगो नहीं होता है। और तीसरी बात आप देखिए कि किसका जीवन जी रहे हैं, शिकायत का जीवन जी रहे हैं, उलाहने का जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत ही करते जा रहे हैं। प्रेम तो शिकायतों के लिए जगह ही नहीं छोड़ता है, जहां शिकायत है वहां प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो सामंजस्य है, प्रेम तो स्वीकार्य है। और यहां जितनी भी बातें आप देख रहे हैं सबके सब अस्वीकार के, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम आदेश भी नहीं है, प्रेम योग्यता है और प्रेम स्वीकार्य है। आप आदेश नहीं देते, बिना आदेश दिए आपको सब कुछ मिलता है। और जहां आदेश देंगे वहां तो बॉस और सबॉर्डिनेट बन जाएंगे। आदेश कैसा? तुम ऐसा करो, तुम मुझे इतना चाहो, तुम मेरे लिए ये लाओ, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहती हूं। ये आदेश है, ये आदेश है। अगर प्रेम को कुछ मांगना पड़ जाए तो वह प्रेम नहीं है, फिर तो वह एक भिखारी किस्म का प्रेम हो गया। प्रेम वंचित होता ही नहीं, अपने आप में भरपूर होता है, उसको मांगने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप में भरा पूरा है, वो क्या मांगेगा। हां, उसको हो सकता है कि आप अपनी तरफ से दें, लेकिन प्रेम उसकी कभी भी उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि वह अपने आप में किंग है, सब कुछ है, सर्वस्व है। जो सर्वस्व है उसको और किसकी क्या जरूरत है। तो मित्रों, इस तरह की कुछ बातें भी आपको इस छोटी सी कथा में दिखाई देंगी। मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, फिर से आप सोच करके देखिए, इस पर विचार कीजिए, देखिए शायद आपको ये पॉइंट्स उसमें नजर आए। और देखिए, एक बात और भी है कि विचार करने से चीजें मूल्यवान हो जाती है। कोई भी चीज हो, कोई भी घटना हो, छोटी सी ही क्यों ना सही, मूल्यवान हो जाती है। छोटी सी लघु कथा है, कोई बहुत मतलब उस तरह से नहीं लिखी गई है कि इसमें बड़े आपको शब्द जाल मिलेंगे या श्रृंगारिक है और बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी फिलॉसफी है, नथी कुछ कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। लेकिन उन सिंपल सी बातों को आप अपनी ब्रिलियंसी के द्वारा कैसे अद्भुत बना देते हैं, यही तो आप हैं, आप हैं और आप हैं। तो दोस्तों, आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, जिसे मैं शीर्षक देना चाहूंगा, विक्षोभ में मिलन। इनफैक्ट मिलन जो है विक्षोभ में ही होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज है शुक्रवार, 2 दिनों के बाद ही अब आप सबसे फिर मुझसे मुलाकात हो सकेगी और ढेर सारी बातें हो सकेंगी। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।